ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 13 पृष्ठ संख्या 526 सब लोग निकालिए। मेरे पीछे बोली पंचेतानी महाबाहो कारणानी ने बोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानी सिद्धये सर्वकर्मणां पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। पंच पांच एतानी ये महाबाहो हे महाबाहो कारणानि कारण निबोध जानो मैं मुझसे सांख्य वेदांत में कृत अंते निष्कर्ष रूप में प्रोक्तानी कहा गया सिद्धये सिद्धि के लिए सर्व समस्त कर्मणाम कर्मों का अनुवाद। मेरे पीछे बोलिए हे महाबाहु अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण है, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हाँ तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं पंचेतानी महाबाहो कारणानि निबोध में। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो ये पांच कारण मुझसे सुनो सांख्य कृतांते प्रोक्तानी जो कि बताए गए हैं किसमें वेदांत में बताए गए हैं। सांख्य कृतांत मतलब वेदांत जहां वेदों का अंत है वहां बताए गए हैं सिद्ध है सर्व कर्मणाम जितने भी प्रकार के कर्म हैं उन सब की सफलता के लिए पूर्ति के लिए जितने भी कर्म हैं पूर्ण होते हैं पांच कारणों से है? अगर पांचों कारण अगर अनुकूल नहीं है तो कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। सर्व कर्मणाम का मतलब है जितने भी प्रकार के कर्म हैं मतलब मन के द्वारा किए जाते हैं कर्म या वाणी के द्वारा किए जाते हैं या शरीर के द्वारा किए जाते हैं सर्व कर्मणाम पांच जो है ये कारण जरूर होने चाहिए है? और फिर शास्त्र के विरुद्ध भी जो कर्म किए जाते हैं वो भी और शास्त्र के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वे भी सब प्रकार के कर्म जो है इन पांच कारणों से होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हाँ पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो त्यागी हैं उनको ना तो वो कर्म का फल भोगना पड़ता है इष्ट के रूप में न अनिष्ट के रूप में न मिश्रित। कर्म के जो तीन प्रकार के जो फल हैं उनमें से कोई भी फल नहीं होता जो त्यागी हैं है? मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनके जितने भी कर्म हैं उनका कोई बंधन नहीं है ना तो अच्छा है ना बुरा है ना अच्छा बुरा मिश्रित कोई नहीं क्योंकि बंधन बंधन ही है। जैसे आपको अच्छे बंधन से बांधा जाए अच्छे बंधन से बांधा जाए तो ही बंधन है। हाँ, तो बंधन तो बंधन है, है? आपसे मैं कहूं कि आपको मैं बहुत अच्छी रस्सी से बांधूंगा प्रभु जी, तो आप तैयार हो जाओगे बंधने के लिए? नहीं है? शुद्ध सोने की जंजीर से आपको बांधूंगा तो आप क्या प्रसन्न हो जाओगे कि हाँ बांधो मुझे? लोहे का बंधन हो चाहे सोने का बंधन हो, है? लेकिन बंधन तो बंधन ही है। तो इस प्रकार से जो है ना, भगवान कहते हैं कि जो त्यागी हैं, कर्म फल का त्याग करने वाले हैं, तो जो कर्म फल के त्यागी हैं यानी कृष्ण भावना भावित हैं, तो उनको तीनों प्रकार के कर्म फल में से कोई भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या मिलता है? कृष्ण की प्राप्ति होती है उनको, है ना। तो इसी कारण से भगवान अब जो है ना पांच कारणों की चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में। अगले श्लोक में पांच कारणों का वर्णन करेंगे भगवान की, पांच कारण वो कौन कौन से हैं। और आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं, अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहां तक कि शंकर भी, शंकर का मतलब शंकराचार्य, यहां तक कि शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः वैसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। तो भगवान आगे चल करके जो पांच कारण बताएंगे उनमें पांचवा कारण कौन है? देव, यानी परमात्मा। तो चरम नियंत्रण परमात्मा के द्वारा है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वसिताहम हृदय सन्निविष्टा। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य बता दिया, भगवान पांच कारण जो बताना चाहते हैं कर्म के, तो क्यों बता रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी ने बता दिया। इसमें भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जीवात्मा है तो बहुत तुच्छ है, पांच कारणों में से एक कारण जीव ही है, है ना। और कोई अगर अपने को ही कारण समझ ले तो दुर्मति है, तो वो दुर्मति है। तो इस श्लोक में भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, निबोध। निबोध में कि तुम मुझसे जानो, तुम मुझसे सुनो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भगवान से श्रवण करें, भगवान सुने। इस अध्याय में बहुत से श्लोक हैं जिनमें भगवान ने ये आदेश दिया है अर्जुन को कि तुम सुनो। जैसे कि पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहे हैं इच्छामि वेदितुम, मैं जानने की इच्छा कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं, ये पहला श्लोक है। इसके बाद चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं श्रृणु मे, तुम मुझसे श्रवण करो, चौथा श्लोक है। फिर तेरहवां श्लोक तो यह है ही है, जैसे भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जानो, तुम मुझसे सुनो। इसी प्रकार से 29वां श्लोक है इस अध्याय में, 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रृणु बुद्धिर्वेदम धृतेश्च गुणतस्त्रिविधम श्रृणु, कि तुम मुझसे सुनो। बुद्धि का भेद और धृति का भेद, तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार की धृति। तो भगवान कह रहे हैं श्रवण करो मुझसे। 29 के बाद 36वां श्लोक, 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रृणु, श्रृणु में क्या तीन प्रकार के सुख हैं, तुम मुझसे श्रवण करो। फिर श्लोक संख्या 45, इसमें भी भगवान कहते हैं तत्क्षणो स्वे स्वे कर्मण्यभिरधा संसिद्धिम लभते न रहा स्वकर्मणतः सिद्धि में था वेन्दय तत्क्षणो, कि अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कैसे सफलता प्राप्त करता है उसको श्रवण करो भगवान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद 50वां श्लोक है, श्लोक संख्या 50 में भगवान क्या कहते हैं, निबोध में, जैसे इस श्लोक में 13वें श्लोक में निबोध, तो भगवान कहते हैं सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो निबोध में। इसके बाद 58वां श्लोक देखिए, 58 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम नहीं श्रवण करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अच्छा, तुम अहंकारान नश्रो सजी विनंगसी, अहंकार के कारण अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, है ना। तो श्रवण का इस प्रकार से महत्व है। इसके बाद 64वां श्लोक निकालिए, इसमें भगवान क्या कहते हैं, सर्वगुहितमं भूय श्रुणु मे परमं वचः, जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है उसे तुम सुनो। अर्जुन से फिर कहते हैं क्यों, इष्टोऽस्मि मे दृढमिति, तो मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, ततो वक्ष्यामि इति हितम्, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा। इसके बाद 71वां श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 71, इसमें भगवान क्या कहते हैं, उपदेश का अंत है भगवान के, क्या कहते हैं, श्रद्धावान अनसूयस्य श्रुण्यादपि अनुराह, जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है तो क्या होता है, वो पापों से मुक्त होकर के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा श्रुणात। फिर 72वें श्लोक में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कच्चित श्रुतम पार्थ तुए का ग्रहणचित था, हे प्रथा पुत्र क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना, अर्जुन से पूछते हैं क्या तुमने सुना। तो ये भगवान अंत में गीता के अंत में पूछ रहे हैं। 74वां श्लोक देखिए, संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमम असुर समद्भुतम रोमहर्षणम, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, श्रवण किया मैंने, संजय कह रहे हैं। इस श्लोक में 75 देखिए, इसमें भी संजय कहते हैं कि मैंने श्रवण किया है ये संवाद, किसकी कृपा से, व्यास देव की कृपा से, व्यास प्रसादा श्रोतवान एतन गुह्यम महम परम, तो व्यास जी की कृपा से मैंने श्रवण किया है। तो आपने देखा कितने श्लोकों में श्रवण का महत्व बताया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 श्लोकों में, इसी अध्याय के 13 श्लोक में श्रवण की बात आई है और 13 श्लोक संख्या भी 13 है आज की, है ना, और 13 श्लोक है। तो अब 5 जो कारण है कर्म के, इनकी चर्चा तो अगले श्लोक में होगी, इसलिए हम चर्चा करेंगे सांख्य की, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तो सांख्य शास्त्र का जो प्रवर्तन है ये कपिल भगवान के द्वारा हुआ, कपिल भगवान जो देवहूति के पुत्र हैं, एक दूसरे भी कपिल हुए हैं जो कि प्रभुपाद कहते हैं वो नकली कपिल हैं, नास्तिक कपिल हैं, तो उन्होंने भी सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया है लेकिन वो नास्तिक हैं, और ये वो असली नहीं है सांख्य शास्त्र, लेकिन देवहूति के पुत्र जो कपिल भगवान हैं उन्होंने असली सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया है और माता देवहूति को सुनाया है, जो कि श्रीमद् भागवत के 3rd स्कंद के 9 अध्याय में कपिल भगवान ने उपदेश किया है। तो 26वां अध्याय में पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें 72 श्लोक हैं और भगवान जो है भौतिक प्रकृति के तत्वों का वर्णन करते हैं, सांख्य शास्त्र के अनुसार भौतिक प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो इस अध्याय में 72 श्लोक हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं सांख्य। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। सांख्य से, सांख्य का मतलब है संख्या। संख्या जो है आप अगर करते हो तत्वों की, कौन कौन से तत्व हैं, तो अपने को आप प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि जान लोगे कि ये प्रकृति के तत्व हैं, है ना, मैं इनसे अलग हूं, है ना। इस प्रकार से अतते सम प्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथं यन् विदित्वा विमुच्येत पुरुषा प्राकृतैर्गुणे। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की गांठ कट जाती है, ग्रंथियां कट जाती हैं। ज्ञानम नेत्रे सार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। अब सांख्य का जो वर्णन है, कपिल भगवान शुरू करते हैं कहां से, श्री भगवान जो अनादि है, तो यहां से ही जो है ना सब तत्व इन्हीं से ही निकलते हैं। श्री भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है, वे प्रकृति के गुणों से परे, इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं, वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनके स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। सबसे पहले तत्व क्या है, भगवान। सांख्य में अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति पर प्रत्यक धाम स्वयं ज्योतिर विश्वम ये समन्वितम। तात्पर्य लिखा है श्री भगवान को आदि रहित यानी अनादि बताया गया है, वे पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। फिर कपिल भगवान कहते हैं उन महान से महानतम श्री भगवान ने क्या किया, सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया। जो भौतिक प्रकृति है अपनी लीला के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और वैष्णवी है। ये असली सांख्य है। भौतिक प्रकृति क्या है, त्रिगुणमयी है और वैष्णवी है। वैष्णवी का मतलब विष्णु की भक्त है। प्रकृतिम सूक्ष्मम देवीम गुणमयीम विभु यद्रच्छये वो प्रगताम अभ्यपद्यते लीलयः। अपने तीन गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त ये भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। माया के अंदर एक गुण है क्या, ज्ञान को आच्छादित करना। तो जीव का ज्ञान जो है ना ढक जाता है। और भौतिक प्रकृति अनेक प्रकार के रूप जो है ना ये प्रकट करती है जीव के सामने। गुणेन विचित्रा सजतीं सर्वपा प्रकृतिम प्रजा लोके ममोहे सद्यः तई है ज्ञान गुहयाम। तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बादल सूर्य से उत्पन्न होता है ना, और सूर्य को ढक देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य को नहीं ढकता, हमारी आंखों को ढकता है, और हम क्या क्या सोचते हैं कि सूर्य को ढक दिया। उसी प्रकार से माया जो है भगवान को नहीं ढकती, हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, कारण क्या है, हमारे ज्ञान को ढकती है माया। आगे कपिल भगवान कहते हैं अपनी विस्मरणशीलता के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। देखा, ज्ञान ढक गया जीव का, अब वो क्या सोचता है कि मेरा कर्म क्षेत्र क्या है, ये प्रकृति है, और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमां कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। आगे कपिल भगवान कहते हैं भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं, यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता, ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। कारण क्या है? भौतिक चेतना। ये चेतना जो है दूषित है। चेतना की उन्नति की गई है पानी से। आकाश से पानी जब गिरता है वर्षा का तो शुद्ध होता है, और जैसे जमीन में स्पर्श किया तो दूषित हो गया। अब इसको शुद्ध करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? उसी प्रकार से चेतना हमारी जो कृष्ण भावना भावित चेतना है वो प्रकृति के संसर्ग से दूषित हो गई। तदस्य संस्कृतिर बंधा पारित्रंत्यम तत्कृतम भवत्य करतुरी सस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों और इंद्रियों के देवताओं का कारण प्रकृति है, इसे विद्वान व्यक्ति जानते हैं जो स्वभाव से दिव्य है। ऐसी आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं, सुख दुख जैसे अनुभव आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन ये शरीर इंद्रियां और इंद्रियों के देवता ये बनते कहां से? भौतिक प्रकृति से बनते हैं, लेकिन जो जीव है वो सुख दुख भोगने वाला है। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्व सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। अब देवभूति क्या कहती है? देवभूति कहती है कि हे पुरुषोत्तम, आप परम पुरुष और उनकी शक्तियों के लक्षण कहो, क्योंकि ये दोनों सृष्टि के कारण है। कौन से? प्रकृति और पुरुष, इनके लक्षण बताइए। प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्चार्यदात्मकम्। अब भगवान बताते हैं प्रकृति। भगवान कहते हैं तीनों गुणों का संयोग ही इस सृष्टि का कारण है, इसे प्रधान कहा जाता है। जब ये प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। यह तंत्र गुणम अव्यक्तम नित्यम सदै सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर अविशेषम विशेषवन। अब प्रकृति के पांच स्थूल तत्व हैं और पांच सूक्ष्म तत्व हैं, चार अंतःकरण हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, इस तरह से 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के। पंचभिः पंचभिर् ब्रह्म चतुर्भिर् दशभिः तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। तो 24 तत्व भगवान ने बतलाए हैं। पांच क्या है? स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और पांच सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म तत्व उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना। फिर चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। पांच ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र चक्षु स्पर्श दसना ग्रहण। फिर पांच कर्मेंद्रियां, हस्त पाद वाक उपस्थ गुदा। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 24 तत्व हो गए ना। तो भगवान बताते हैं, अब भगवान इनके नाम बता रहे हैं। पांच स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, और सूक्ष्म तत्व भी पांच हैं, गंध स्वाद रंग स्पर्श तथा शब्द। महाभूतानि पंचैव भूरापो निर्मरुन्नभ तन्मात्राणि चतावन्ति गंधादीनि मतानि मे। अब ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये क्या है? श्रवणेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, दृश्येन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेन्द्रिय, और फिर काम करने की इंद्रिय, हस्तेन्द्रिय चलने की इंद्रिय, पादेन्द्रिय, फिर जननेन्द्रिय है ना, और फिर मल त्याग की इंद्रिय। ठीक है, तो पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम
इंद्रियाणि दश श्रोतम त्वंग्रिं रसन नासिकाहं वाकरो चरणो मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते।
हाँ, अब चार प्रकार के अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना, चार प्रकार के अंतःकरण। इनके विभिन्न कार्यों के अनुसार इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों वाले हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्त मित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्षते भेदो वृत्त्यालक्षण रूपयम्। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। 24 तत्व हो गए और ये 25वां तत्व कौन है? काल है। एतावानि एव संख्यातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काला पञ्चविंशकः। आगे कपिल भगवान कहते हैं, भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। इस भौतिक जगत में जो काल है वो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम् अहंकारे विमूढस्य कर्तो प्रकृतिम ईयुषः। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है कि मैं शरीर हूं, है ना। ये मृत्यु का भय तभी होता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, हे स्वयंभू पुत्री, यानी मनु की पुत्री, अपनी माता को कह रहे हैं देवभूति को, हे मनु पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है, जिनसे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो काल ही जो है प्रकृति को गतिशील बनाते हैं और उसी से फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति रघुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। श्री भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। अंता पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बही समन्वित के सत्वानां भगवान आत्मे मायया। इसमें कपिल भगवान कह रहे हैं कि अंदर तो परमात्मा के रूप में है और बाहर काल के रूप में है, है ना। जिसकी दृष्टि बाहर होती है तो उसको काल के रूप में भगवान दिखाई देते हैं, मृत्यु के रूप में, और जिसकी दृष्टि अंदर होती है, अंदर से भगवान अमृत प्रदान करते हैं, मृत्यु का भय दूर करते हैं, है ना। आगे जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरणमय कहते हैं। ये तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा क्षुब्ध की जाती है। देवान् क्षुभित धर्मेण्याम स्वस्याम योनो परापुमान आदत्त वीर्यम सासोत महतत्वम हिरण्मयम्। तो इसमें क्या बताया है कि भगवान प्रकृति का गर्भाधान करते हैं। भगवद गीता 14:3 में भी प्रकृति के गर्भाधान का वर्णन है। भगवान जो है गर्भ स्थापित करते हैं, वीर स्थापित करते हैं, जिसे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा। आगे इस प्रकार तेजस्वी महातत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को पी जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। महातत्व अंधकार को पी जाता है, मतलब बहुत प्रकाशमान है। विश्वमात्मे गतम यंजन कूटस्थो जगदंकुरा सुतेजसा पिबतीव्रम आद प्रस्वापनम तमहम। अब सतोगुण, सतोगुण महातत्व में प्रकट होता है। जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ और शांत अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है वो सतोगुण महातत्व में प्रकट होता है। यत्तन सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवता पदम यदा होर वासुदेव आख्यम चित्तम तन महदात्मकम। इसके बाद महातत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ उदय होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने से पहले अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ मीठा और शांत रहता है ना, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? शांतत्व, स्वच्छत्व और अविकारत्व। मतलब आकाश में जो पानी है वो शांत